आज हम सभी का बहुत सौभाग्य है हमारे बीच बाबा के नूरे रत्न आदरणीय भ्राता मोहन सिंघल जी उपस्थित हैं। आप सभी करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय भाई साहब ने साकार बाबा की 7 साल पालना लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। 1962 से आप इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े, अपनी अथक सेवाओं से आपने कई जगह सेवा केंद्र खोलने के आप निमित्त बने। 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के दौरान आपके निर्देशन में 12 पद यात्राएं निकाली गई। वर्तमान समय में आप ज्ञान सरोवर में एकेडमी कोऑर्डिनेटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। 92 में आपको एचआरडी मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अर्जुन सिंह के द्वारा पर्यावरण श्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके द्वारा इंडस्ट्रियल पीस, चिल्ड्रेन अपलिफ्टमेंट, यूथ डेवलपमेंट ऐसी कई प्रदर्शनियां निर्माण की गई है। ब्रह्मा बाबा ने जब 18 जनवरी 1969 में अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, आदरणीय भाई साहब उस समय मधुबन में ही थे और बाबा की उस कर्मातीत अवस्था को आपने अपनी आंखों से देखा है और आज हम आपसे सुनेंगे ब्रह्मा बाबा की आंखों देखी हुई कर्मातीत अवस्था। आदरणीय भाई साहब,
ओम शांति। कर्मातीत अवस्था, जब भी ये शब्द हम सब सुनते हैं तो स्वतः ही एक चित्र आंखों के सामने घूम जाता है और वो है साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का, क्योंकि पूरे सृष्टि चक्र में अभी तक एक ही आत्मा ऐसी है जिसने अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। और हम सभी बच्चों के लिए वो एक रोल मॉडल बने, क्योंकि हम सभी का भी लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। कोई भी स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है, उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर होता है जीवन में। जो भी वो पढ़ाई करता है उस लक्ष्य को हासिल करके वैसा बनना, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई वकील हो, कोई भी हो, लेकिन लक्ष्य उसके माइंड में, दिमाग में सदैव रहता है तो फिर वैसी स्थिति को वो प्राप्त करता है। तो ब्रह्मा बाबा के मन में भी, बुद्धि में भी, जब से इस ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना हुई, पहले से ही ये लक्ष्य बहुत क्लियर हो गया था कि मुझे क्या बनना है। हम सबने पढ़ा है बाबा को जब दिव्य साक्षात्कार हुए 1936-37 में, और वो साक्षात्कार में एक तरफ बाबा को विष्णु चतुर्भुज के साक्षात्कार हुए और ये आवाज सुनाई पड़ी कि अहम चतुर्भुज तत्व, मैं चतुर्भुज हूँ, विष्णु स्वरूप हूँ, तुम्हें भी ऐसा बनना है। एक तरफ सृष्टि परिवर्तन के साक्षात्कार हुए, दुनिया बदल रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, एटम बम पड़ रहे हैं, विनाश हो रहा है, एक तरफ प्रकृति के 5 तत्वों की हलचल हो रही है, सब विनाश हो रहा है। एक तरफ जहाँ ये साक्षात्कार हो रहे थे, वहीं बाबा को एक और भी साक्षात्कार हुआ जो हम सब ने भी बाबा की जीवन कहानी में पढ़ा है। कौन सा साक्षात्कार? आकाश में जैसे छोटे छोटे सितारे हैं, परम धाम का चित्रण, और वो सितारे जमीन पर आ रहे हैं, कोई राजकुमार बन रहा है, कोई राजकुमारी बन रही है। वो दुनिया कितनी मधुर है, मीठी है, हल्का संगीत बज रहा है, सदाबहारी मौसम है, और बस सब छोटे छोटे राजकुमार राजकुमारियां खेल रहे हैं, रास कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। खुशी के सिवाय वहां और कुछ नहीं। और साथ साथ बाबा को एक आवाज सुनाई पड़ी ऊपर से आती हुई, कौन सी? तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। ये शिव बाबा का आदेश हुआ ब्रह्मा बाबा को। हालांकि ये आवाज सुन के बाबा को एकदम ये हुआ, वो कौन था, किसकी आवाज थी, मैं ये दुनिया कैसे बनाऊंगा, कुछ भी बाबा को उस समय स्पष्ट नहीं था। लेकिन बस जब से ये सुना कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तब से बस बाबा का जीवन पूरा ही बदल गया, प्रभुमय हो गया। और इसी कारण बाबा सबसे पहले कर्मातीत हो गए। केवल अपने जीवन के 33 वर्षों के पुरुषार्थ से ही बाबा कर्मातीत हो गए, सिर्फ 33 वर्ष। 1936 में ज्ञान में आए और 1969 में तो कर्मातीत अवस्था को पा लिया। तो ऐसी क्या बात थी जो बाबा इतनी जल्दी कर्मातीत अवस्था को, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया, और हम सब अभी भी उसी मार्ग के राही हैं। वो अगर हम एक एक बात को देखते चलेंगे तो हम लोगों के पुरुषार्थ में भी तीव्रता आती जाएगी। तो सबसे पहली बात तो यही थी कि बाबा को बुद्धि में सदा ये रहता था, अंत मति सो गति। अंत में जैसे हमारी मति होगी वैसी ही गति होगी, और हर सेकंड जीवन का मेरा कोई भी समय अंतिम समय हो सकता है। इसीलिए अगर हम सब बच्चों की बुद्धि में भी यही रहेगा कि कभी भी हमारे जीवन के श्वास का क्या भरोसा, अंत मते सोगति के अनुसार, तो इस कारण से मुझे ऐसा पुरुषार्थ करते रहना है जो जिस समय भी अगर बुलावा आ जाए वो जो है मेरी सबसे ऊंची अवस्था। और इसीलिए बाबा को जब से भी ये हुआ कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तब से बस बाबा इस काम में ही लग गए। और सबसे पहला पहला पुरुषार्थ और बाबा ने क्या किया, जो हम सबको भी रोज मुरली में बाबा सुनाते हैं, और आज की मुरली का भी विशेष वही लक्ष्य था, क्या था? देही अभिमानी, यानी आत्मा अभिमानी। तो सुनते तो हम सब भी रोज हैं, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो, कोशिश भी करते हैं, मुरली सुनते हैं, खुशी भी होती है, नशा भी होता है, लेकिन हम सबको ये भी मालूम है कि सारे दिन भर में कितने समय हमें याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। वो जो हम चाहते हैं उतना नहीं रहता, क्यों? लेकिन बाबा को वो रहता था। किसी भी चीज का प्रमाण होता है ना, क्यों रहता था? क्योंकि बाबा जिस आत्मा को भी देखता था, जिस व्यक्ति को देखता था, वो आत्मा अभिमानी हो जाता था। तो जो खुद आत्मा अभिमानी होगा, वो जिस आत्मा को भी देखेगा, जिस आत्मा से व्यवहार करेगा, जिसको भी दृष्टि देगा, भले थोड़े समय के लिए भी वो आत्मा अशरीरी हो जाएगी। और ये हम बाबा को देखते थे। बस मधुबन में जाते थे, बाबा से बहुत बार मिलना हुआ, बस बाबा के पास गए, बाबा आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, वैसे बाबा की बाहें फैल जाती थी, और बस हम सब जैसे चुंबक की तरह खींचते हुए बाबा की बाहों में आ जाते थे। और बस ऐसा उस के अंदर आकर्षण था कि अगर दूर से भी बाबा देखता था, दूर से भी दृष्टि दी, बाहों में इधर नहीं भी आए, लेकिन अगर दूर से भी तुरंत अशरीरी हो जाते थे, विदेही हो जाते थे। और फिर क्या होता था, फिर बाबा को देह में लाने का पुरुषार्थ करना पड़ता था। बस बाबा ऐसे थपथपाता था और ये हम लोग फिर जैसे देह में खिंच करके आते थे, और उसके बाद बाबा टोली खिलाता था, हालचाल पूछता था, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, आदि आदि कोई और बात होती थी बाबा करता था। तो हम अपने को चेक करते चलें, क्योंकि हम भी कर्मातीत अवस्था के राही हैं, कि क्या मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं जिस भी आत्मा को देखता हूँ या देखती हूँ, वो आत्मा भी अशरीरी हो जाती है, विदेही हो जाती है। और ये तभी होगा अगर मैं खुद आत्माभिमानी स्थिति में होंगी आत्मा, तो जिसको भी दृष्टि देंगे, जिसके हमारे वाइब्रेशन, हमारा ऑरा, हमारा ये जितने भी चीज हैं, ये सब दूसरे को विदेही बना देंगे। तो एक तो हम ये चेक करते चले, और बाबा की ये स्थिति हमने आंखों से देखी बहुत साल तक। बस बाबा होता था, और इसके पीछे बाबा का कौन सा पुरुषार्थ था, अपना बाबा ने पक्का किया लिख लिख के। आपने भी देखा होगा, पहले तो दो बाबा के हाथ की दो डायरियां हैं लिखी हुई। एक डायरी में यही लिखा हुआ है, आप सबने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, हाँ, बाबा ने कैसे पक्का किया कि मैं आत्मा हूं लिख के। और व्यक्ति की बुद्धि कहाँ जाती है, जहाँ संबंध होता है, स्नेह होता है, प्यार होता है, अपनी पत्नी में, पति में, बच्चों में, माता पिता, भाई बहन, बंधु सखा, ये सब बुद्धि जाने के रास्ते हैं। तो बाबा ने लिख लिख करके पक्का किया मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है। जसोदा बाबा की युगल का नाम था, नारायण बाबा के लड़के का नाम था, नारायण आत्मा है। लिख लिख करके ऐसे पक्का किया जिससे कि वो आत्मा बाबा की बुद्धि में पक्का हो जाए ये आत्मा है, उनके तरफ संबंध की वजह से दृष्टि न जाए, ये कि पत्नी है, ये बच्चा है, ये बच्ची है, नहीं, आत्मा है। तो एक तो हम अपने को ये चेक करें कि मेरा भी ऐसा सीरियस सिंसियर पुरुषार्थ है, मैंने भी ये पक्का किया है, लिख कर करें, चाहे स्मृति से करें, चाहे किसी भी रीति से करें, लेकिन बाबा ने लिख करके ये पक्का किया था ये पुरुषार्थ को कि हम कैसे आत्मा है। एक तो ये बात, और इस कारण से क्या हो गया था कि बाबा को इतना पक्का हो गया था कि जिस व्यक्ति को भी जिसको देखते थे वो विदेही हो जाता था। दूसरी बात, साथ में एक और डायरी है, एक तो ये डायरी है, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये लिख लिख के दीवालों पर भी बाबा चित्र बना देता था, आदि आदि। और दूसरी बात जो बाबा मुरली में कहता है, जो हम सब बच्चों का पुरुषार्थ है ही अंत समय का, और अंतिम समय तक उस पुरुषार्थ में हमें विजय प्राप्त करनी है, कौन सा, जो बाबा ने कहा है, जो हमारे शास्त्रों में है, धर्म ग्रंथों में है, वो है मन के ऊपर नियंत्रण। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा है, धर्म ग्रंथों में सब में, और बाबा ने भी वो बोला जो कि मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गीता में भी कहा है मन मना भव, कोई तन मना भव, धन मना भव, संबंध मना भव नहीं, मन मना भव। तो जो ये पुरुषार्थ है कि मन को कैसे हम नियंत्रण में रखें। अक्सर हम कह देते हैं भक्ति मार्ग में भी और दुनिया में, और सभी लोग क्या करें भाई, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, हम चाहते तो नहीं है, मैं ये बोलना तो नहीं चाहता था, क्या करूं, मुंह से शब्द निकल गए, मैं ये करना तो नहीं चाहता था लेकिन ये हो गया। ये जो हम लोग बात कह देते हैं, वास्तव में ये सब प्रदर्शित करते हैं कि मन हमारा ज्यादा शक्तिशाली हो गया है आत्मा राजा से। मन है क्या, आत्मा का ही तो एक अंग है। तो मैं आत्मा राजा हूँ और मन मेरा मंत्री है, बुद्धि मेरी सेनापति है, संस्कार सैनिक है। तो इसीलिए बाबा पिछले कुछ वर्षों से बार बार ये कह रहा है, बच्चे मन को अपने कंट्रोल में रखो, मन मना भाव, मन जीते जगत जीत। अब बाबा ने कैसे जीता मन को? ऑर्डर किया। जो राजा होता है ना, राजा के वश में उसके मंत्री सेनापति रहते हैं। अगर मंत्री ज्यादा बलशाली हो जाए, राजा अगर कमजोर हो जाए तो क्या होगा? सारी अव्यवस्था हो जाएगी। और आज यही हो गया हम सबके साथ कि हम सब आत्मा हैं राजा, लेकिन कहने के राजा रह गए। मन हमारा ज्यादा शक्तिशाली हो गया, आत्मा के कहने पर चलता ही नहीं, बुद्धि आत्मा के कहने पर नहीं चलती। इसने बाबा ने कैसे कंट्रोल किया? वो बाबा के हाथ का लेटर, बाबा ने तो सिंधी में लिखा था, लेकिन हम लोगों को उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके एक पुराने भाई बहुत होते थे, दादा आनंद किशोर जी, उन्होंने हम लोगों को उसका ट्रांसलेशन वो करके दिया था। गौर से सुनना, बाबा ने मन को कैसे लेटर लिखा। बाबा अपने मन को संबोधित कर रहे हैं, इतनी बहुत पहले की बात, 1936-37 की, उसी समय जब ज्ञान में आए। हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन फिर भी तू ज्यादा बलशाली हो गया, मुझ आत्मा राजा को तुमने कमजोर बना दिया। तूने मुझ आत्मा राजा को अपने वश में कर लिया और मैं भी तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे चलता रहा। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे बता देता हूं कि मैं आत्मा राजा अब अपनी स्वस्थिति में स्थित हो रहा हूं, हो गया हूं। अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। बाबा ने मन को ऑर्डर किया, तुझे मेरे कहने पर चलना है, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। और इस तरीके से बाबा ने अपने स्वमान की सीट पर स्थित होकर के मन को ऑर्डर किया, मैं राजा हूं, ये मेरा अधिकार है, स्वमान, अब तुझे मेरे कहने पर चलना है। इसी तरह बाबा बुद्धि को भी कह रहे हैं कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ चलती रही, और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को इतना कमजोर कर दिया कि मैं भी तुम्हारे कहने पर चलता रहा। लेकिन हे बुद्धि, अब मैं तुझे भी कह देता हूं, अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं राजा हूं, तुझे मेरे कहने पर चलना है। भक्ति में तो कहते क्या करें, मन चंचल है, बुद्धि भाग जाती है इधर उधर, लेकिन ये कमजोरी से वो वश में नहीं आएंगे, उन्हें ऑर्डर करना है। तो हम भी अपने से पूछें कि क्या मैंने भी अपने मन बुद्धि को ऑर्डर किया है कि तुम्हें मेरे कहने पर चलना है, मैं आत्मा राजा हूं, ये कर्मेंद्रियां ये सब मेरी प्रजा है, ये स्थूल कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार ये मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना है। तो बाबा का इतनी जल्दी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का एक ये भी राज था कि बाबा ने अपने मन को, क्योंकि मन ही हर चीज की जड़ है, हर चीज मन से पैदा होती है, और मन में अगर संकल्प ही हमारा शक्तिशाली होगा, हमारे कर्म भी शक्तिशाली होंगे, व्यवहार शक्तिशाली होगी, वाणी शक्तिशाली होगी। और अगर मन ही कमजोर हो गया, हमारी वाणी व्यवहार कर्म सभी कमजोर होते चले जाएंगे। तो इसीलिए द्वापर युग से तो यही हुआ, हमारा मन कमजोर होता चला गया और इस कारण से सब कुछ कमजोर, विकारों के वशीभूत होते चले गए। लेकिन अब बाबा पुनः हमारी हमें स्वस्थिति में, और अगर खाली कहने की बात होती तो ये कहने की बात तो दुनिया भी बहुत लोग कहते हैं, ऋषि मुनि भी बहुत कहते चले आए, साधु संन्यासी भी कहते, लेकिन बाबा ने बन के दिखाया, करके दिखाया। इसलिए बाबा की वाणी में वो ओज था। सबने वो कहानी गांधी जी वाली या ये कि भाई अगर कोई खुद ही गुड़ खाता होगा, दूसरे को बोलेगा भाई गुड़ मत खाओ, तो उस पर प्रभाव नहीं होगा। खुद सिगरेट बीड़ी पीता होगा, दूसरे को बोलेगा मत पियो, प्रभाव नहीं होगा। तो इसी तरह आज द्वापर युग से यही सुनते आए, लेकिन फिर भी गिरते चले आए, प्रभाव नहीं हुआ। अब बाबा ने चूंकि पहले करा, उसके बाद ये दिखाया, तो आज इतनी सारी जो बाबा की सेना खड़ी हो गई है। और हरेक को होता है, बस जब मुरली सुनते हैं, बाबा की बात सुनते हैं, कितना नशा चढ़ता है, पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाती है, और यथा संभव करते भी है। भले लक्ष्य चूंकि बहुत महान है, उतना हम नहीं कर पाते, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्रता तो आती है, दिशा मिलती है पुरुषार्थ को। एक बाबा का कर्मातीत अवस्था में तरफ जाने का एक ये विशेष रहस्य है। और क्या है, हमें याद है गुलजार दादी जी बताते हैं, हाँ, छोटे थे जब ज्ञान में आए, 8-9 साल के ऐसे थे, और ध्यान का तो शुरू से पार्ट था। तो बाबा भी कई बार दादी को भेज करके ऊपर से और संदेश शिव बाबा से लिया करते थे। तो दादी बताते हैं कि एक बार जब वो ऊपर ध्यान में गए, तो ऊपर ब्रह्मा बाबा को देखा सूक्ष्म मथन में। बाबा तो यहाँ साथ साथ साकार में तो रहते थे, लेकिन जब ऊपर देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये तो बाबा हमारे साथ साथ हैं। छोटी तो थी, 8-9 साल की बच्ची थे। तो वो नीचे जब ध्यान से उतर के आए, तब उन्होंने आके मम्मा को ये बात बताई, मम्मा आज जब मैं ध्यान में गई थी तो वहां पर बाबा को मैंने देखा, ऐसे बाबा तो यहाँ हमारे साथ हैं, रोज हमारे साथ रहते हैं, हम लोग खाते पीते हैं, खेलते। तो मम्मा को भी वो मालूम नहीं था, मम्मा ने कहा तुम बाबा से ही पूछना। तो फिर बाबा से उन्होंने पूछा कि बाबा आप तो यहाँ हमारे साथ हो, आज हम मैं ऊपर ध्यान में गई तो वहां पर भी मैंने आपको देखा। तो अच्छा, तब तक सूक्ष्म पतन का उतना राज क्लियर नहीं था कुछ भी। हाँ बच्ची और क्या, तो बस वहाँ बाबा बिल्कुल आपकी तरह ही सब कुछ शक्ल सूरत थी। तो बाबा को भी ये क्यूरोसिटी और ये हुआ कि अच्छा और क्या देखा बच्ची, बस सब शक्ल सूरत सब थी, उनमें लाइट ज्यादा थी, तेज ज्यादा था, यहाँ पर आप हमारे साथ हो सब कुछ बिल्कुल वैसा, लेकिन बहुत प्रकाश था, तेज था। तो उन्होंने कुछ बात करी कि नहीं बाबा, तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची जब अगली बार ध्यान में जाओ तो पूछना कि आप कौन हो बाबा, है? बाबा आप तो हमारे साथ ही यहाँ पर हो, तो आप कौन हो। तो अगली बार जब गुलजार दादी फिर ध्यान में गई तो वहाँ देखा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाबा को, तो पूछा कि बाबा आप कौन है और आप तो वहाँ हमारे साथ वहाँ पर हैं नीचे। तो कहा कि बच्ची मैं उसी ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप हूँ, और ये यहाँ पर संपूर्ण स्वरूप, हर बच्चे का अपना संपूर्ण स्वरूप है और हर एक को वो प्राप्त करना है, तो मैं बाबा जो वहाँ पर है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, तो मैं उनका संपूर्ण स्वरूप। तो उन्होंने आके नीचे बताया कि वहां बाबा ने ये बोला है कि मैं ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप। तो बस जब से बाबा को ये हुआ, ये सुना, तब से बाबा को और बिल्कुल स्पष्ट हो गया अंतिम लक्ष्य, मुझे ऐसा संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना है। संपूर्ण स्वरूप में कोई शक्ल सूरत नहीं बदल जाती, लेकिन लाइट तेज जो बाबा ने कहा ना, परसों भी मुरली में बाबा ने क्या बोला, जो आत्मा अभिमानी स्थिति में होगा उसका लक्षण क्या होगा, पहले शुरू में ही लाइन, हाँ, बेफिकर बादशाह जो होगा उसका लक्षण लाइट, उसके चेहरे से माथे से लाइट निकलती रहेगी, प्रकाश का। जैसे लाइट का बाबा ने बताया, एक लाइट का ताज होता है एक विकारों को जीतने का, और उसके निशानी दी है रत्न जड़ित। तो इस कारण से वो बाबा ने बताया कि लाइट। तो ब्रह्मा बाबा को भी हम देखते थे, सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को 61 में जब ज्ञान में आए, 62 में पहली बार देखा, और उसके बाद तक जब तक देखते रहे बाबा का वो लाइट निरंतर जैसे बढ़ता जा रहा था। अब बिल्कुल जैसे कि चेहरा एकदम ऐसा चमकीला, आंख से लगता था जैसे बिल्कुल 1000 पावर के बल्ब जल रहे हैं, और बिल्कुल लाइट फरिश्ते स्वरूप में बाबा चलते जा रहे हैं। तो हम भी ये चेक करते चले, लाइट का भी बाबा ने मतलब बताया ना, लाइट माने एक तो प्रकाश स्वरूप और दूसरा हल्का, लाइट कहते हैं, बहुत लाइट है, हल्का है। तो मैं भी जीवन में कितना हल्का, कोई बाबा ने कहा फिकर का कोई फिकर का बोझा तो नहीं है। तो जितना हम जीवन में, वही परिवार है, वही सब कुछ है, घर गृहस्थी सब कुछ वही रहेगा, लेकिन उसका बोझा हम महसूस न करें, फिक्र से फारिग हो जाए। इसीलिए बाबा ने कहा फकुर में जो रहेगा उसे फिक्र नहीं रहेगी। और बाबा का ये देखने में आता था, जिसके चेहरा होगा चिंता होगी तो चिंता की रेखाएं, हम सबने सुना है यज्ञ में ऐसा भी समय आया जब बिल्कुल बैगरी पार्ट हो गया, इतने सारे 300 बच्चे साथ में हैं बाबा के, घर में अनाज के है नहीं, पैसा एक नहीं, कैसे खाएंगे इतने 300 बच्चे। भंडारी भी आकर बोलती है वो बाबा अनाज नहीं है क्या बनाए, लेकिन इतने सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हुए भी ये तो बाबा का ऊपर से परीक्षा जैसे थी, फिर भी बाबा जैसे बेफिक्र बादशाह, बच्ची बाबा का यज्ञ है, बाबा को देखना है, बाबा भेज देगा, इतना निश्चय। और वास्तव में हम सब ने सुना है यज्ञ में ऐसी परिस्थिति थी, 10 बजे तक कुछ नहीं, फिर पोस्टमैन आता है मनी ऑर्डर लाता है, और उस समय के जमाने में तो 1000 रुपया बहुत होता था, वो आया फिर सब अनाज आया और सबने भोजन किया। तो फक्र, इतना नशा हो, विश्वास हो, निश्चय हो, नहीं, भगवान का यज्ञ है, बाबा कभी भी अपने बच्चों को ये भूखा नहीं मार सकता। तो इस कारण से ये फक्र और ये चेहरे से चमकता था, और इसीलिए बाबा का हम लोग क्या देखते थे, सदा इतना यज्ञ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने सारे, लेकिन बाबा का चेहरा सदा खुशी से चमकता रहता था। आप लोगों ने ऊपर गए होंगे, देखा होगा, तब तो हिस्ट्री हॉल जो पांडव भवन के अंदर है, तो बस वहाँ ऐसे हिस्ट्री हॉल में 3 संदली पड़ी हुई हैं, एक संदली पर बाबा बैठते थे, एक पे मामा बैठती थी, बीच की संदली खाली रहती थी, तो जो भी बच्चे आते थे, पार्टी आते थे, वो वहाँ पर आके अपने अनुभव सुनाया करते थे, भाई हम ये लक्ष्य लेके आए हैं, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, अभी ये पुरुषार्थ चल रहा है, आदि आदि। जब आते थे तब अपने अनुभव सुनाते थे, और जाने से एक दिन पहले तब सुनाया करते थे। तो ये वहां पर बस जहां बाबा के संदली थी, और एक साइड में ना लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का चित्र, श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट का चित्र, ये रखे हुए थे। और बस बाबा वो बच्चे कई बार मुरली, क्योंकि इतनी उम्र थी बाबा की, और मुरली सुनाते सुनाते भी कई बार बाबा को खांसी आ जाती थी, इतनी उम्र, लेकिन बाबा बस कैसे जैसे कि लाइट ले। अरे बच्चे मालूम है बाबा की सखी कौन है? कौन है बाबा की सखी? ये खांसी तो बाबा की सखी है, देखो बाबा को छोड़ती नहीं है। इसको इतने किस स्प्रिट में यू सी, मतलब स्प्रिट देखो बाबा की। और बस कोई बात नहीं, मैं शिव बाबा को कई बार बोलता हूँ कि बाबा मेरा इस सखी से पीछा छुड़ाओ खांसी से, तो शिव बाबा क्या बोलता है, बच्चे तुम्हारा ये तो कर्मों का हिसाब किताब है, कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को चुकतू करना ही है, भले मैंने तुम्हारे तन का आधार लिया है और उसका एवजा मैं देता हूँ, लेकिन कर्मों का जो हिसाब किताब है वो तो तुम्हें ही चुकतू करना है, उसके उसमें कोई कंसेशन नहीं। तो जब ब्रह्मा बाबा जैसी आत्मा को भी कोई कंसेशन नहीं, तो मुझे आपको कोई कंसेशन होगा हिसाब किताब चुकतू करने में? नहीं होगा। लेकिन स्प्रिट बाबा की ऐसी थी, बस बाबा बच्चे कल जाके बाबा देखो ऐसा कृष्ण बनेगा, बच्चों को तो खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। और बस बाबा इस तरीके से बोला करते थे, बच्चे मालूम है खग्गियां कैसे होते हैं? नहीं मालूम था तो बाबा करके दिखाया, मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे। बाबा खुशी में ना, बाबा का लक्ष्य था बच्चे कोई भी परिस्थिति आ जाए कभी भी चेहरे पर गम के दुख के निशान ना हो। हमें कौन मिला है? भगवान। तो देखो बच्चे खग्गियां ऐसे मारते हो, कल जाके मैं ये बनूंगा, ये ऐसे करके बाबा बस चेहरे पर वो चमक। जितनी खांसी है व्याधि, 90-93 वर्ष की आयु कोई कम थोड़ी होती है, शरीर तो अपना होता है, शरीर की तकलीफ हिसाब किताब, 63 जन्मों का हिसाब किताब, वो भी सब चुकतू होना होता है, लेकिन चेहरे पर कभी भी बाबा की खुशी कम नहीं हुई। और इसी कारण से बाबा कर्मातीत अवस्था को इतना सहज पा ली। हम लोगों को देखते देखते कई बार ऐसा होता था, अरे बाबा को खांसी आ रही है, हमें हो जाए, बाबा को इससे वो हो जाए, फ्री हो जाए, मुक्ति हो जाए, लेकिन बाबा को कुछ उसका नहीं। अरे बच्चे ये तो हिसाब चुकतू हो रहा है, बाबा को खुशी है, बस जितना जल्दी हिसाब चुकतू होगा बाबा जाके कल ये मिचनू कृष्ण बनेगा, ऐसा वहाँ क्या होगा, कितना कैसी दुनिया होगी, कोई व्याधि नहीं, दुख नहीं, अशांति नहीं, वाह बाबा, ऐसे जो बाबा कहते थे, वाह बाबा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, तो वो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बाबा दिखता था, चेहरे पर वो बाबा की खुशी लगन वो सब दिखती थी। तो ये भी हम चेक करते चले अपने कि मेरे सामने भी जब कोई परीक्षा देह की आई, संबंधों की आई, कोई समस्याओं की कोई भी चीज अगर आती है, तो मेरे चेहरे से तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है, मेरी खुशी कायम रहती है। तो बाबा का ये कहने तक नहीं, जो जो हम साकार में मुरली सुनते हैं बाबा उसका स्वरूप था, कहने की बात ही नहीं, कहने को तो बहुत साधु संत सब बोलते हैं, लेकिन स्वरूप था बाबा। और कभी भी इसीलिए वो, और यही बात ही गीता में कहा, हर परिस्थिति में समान, दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत हानि लाभ जो कहा है, योगी की हर परिस्थिति में स्थिति समान रहती है। इसी बात को लौकिक दुनिया वाले भी क्या बोल गए हैं खुशी के लिए, कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीत में तो हरेक कोई खुश होता है, लाभ में मान में इन सब में तो खुश होता है, लेकिन इनके विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे चेहरे की मुस्कान कम ना हो, वो वैसी बनी रहे, ये है वास्तव में योगी की स्थिति, जो बाबा के सदा वो हमेशा दिखता था। और ये क्यों, जो बाबा ने परसों भी मुरली में बोला, बहुत परिस्थितियां, यज्ञ था, कितना बड़ा यज्ञ, उसमें समस्याएं कितनी आती थी, कोई भी बात होती थी, तो बाबा ने कहा ना, अब समय तीव्र पुरुषार्थ का, तो बाबा का हर सेकंड ही तीव्र पुरुषार्थ का था। और तीव्र पुरुषार्थ की निशानी बाबा ने क्या बताई है, क्या बताई है, हैं? हाँ, फुल स्टॉप, कोई बात हो उसको स्टॉप, बस बात हुई वो आगे ना चले। देखो फुल स्टॉप क्या होता है, जितना भी बड़ा सेंटेंस हो लिखते हैं, लेकिन एक छोटा बिंदी लगा दिया पूरा स्टॉप हो गया, फुल स्टॉप, लेकिन वो सेंटेंस स्टॉप होता है सिर्फ, पूरा टेक्स्ट खत्म नहीं हो जाता, जो 2 है 4 पेज है 6 8 जितना सेंटेंस के बाद बिंदी लगी फुल स्टॉप, वो इस बात का भी प्रतीक है कि एक एक बिंदी फुल स्टॉप का प्रतीक है, और कई सारी बिंदी किस बात का प्रतीक है? कंटिन्यूटी का। एक सेंटेंस अगर है, कुछ आगे बात कहनी है लेकिन जगह नहीं है या उस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो डॉट 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 कर देते हैं, यानी कि ये सेंटेंस जो है अभी चालू है। तो फुल स्टॉप दो बात का सूचक है, एक तो पिछली बात को रोकने का और दूसरा नई बात की बिगनिंग का। जब वो स्टॉप होगा तभी तो नया सेंटेंस शुरू होगा। तो हमें केवल जो व्यर्थ है या पुरानी बात है उसको रोकना ही नहीं है, वो तो रुके, लेकिन वो तभी संभव होगा पूरा जब नई बात की बिगनिंग होगी। नया कोई चीज, खाली वैक्यूम तो माइंड कभी रह ही नहीं सकता कि मन न सोचे, ये तो होगा नहीं। लेकिन मन व्यर्थ सोच रहा है, व्यर्थ सोच रहा है, उसको हमें स्टॉप करें। स्टॉप कर भी दिया, अगर खाली छोड़ दिया मन फिर सोचने लग जाएगा व्यर्थ। तो क्या आवश्यकता है? एक तरफ मन का व्यर्थ सोचना उसको रोकना और दूसरी तरफ समर्थ सोचने को वो शुरू करना। तो इसीलिए जितना जितना समर्थ सोचता चला जाएगा मन, तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ का भी ना समाप्ति होगी। तो खाली व्यर्थ को सोच के उसको स्टॉप करके रोक नहीं देना है, क्योंकि मन का तो काम ही है सोचना। आंख का काम है पलक झपकना, झपकती रहेगी, आप कितनी देर तक रोकोगे। दिल का काम है धड़कना, वो धड़कता ही रहेगा। वो हर चीज का, ब्लड का काम है सर्कुलेट करना, वो करेगा। तो जिसका जो काम है वो करेगा, मन का काम है सोचना। आप सोचने को रोक नहीं सकते लेकिन व्यर्थ सोचने को रोक सकते हैं। और जैसे ही व्यर्थ को सोचने को रोकेंगे, रोका, साथ में समर्थ सोचना वो शुरू हो जाना चाहिए। इसीलिए बाबा का यही था, कोई भी परिस्थिति आई, कोई बात हुई, अक्सर करके मानो बाबा ने कोई प्लान दिया सेवा का, तो बच्चे ऐसे करो ऐसे करो। फिर कई बार बाबा मुरली में बोलता था, बच्चों बाबा ने ये कहा था, बच्चों ने अभी तक नहीं किया। अर्जुन बाबा समझता है, अर्जुन अभी समय पड़ा है, उस चीज का समय नहीं आया। यानी ड्रामा के पट्टे पर बाबा इतना पक्का था कि अगर वो बात नहीं भी होती थी लेकिन बाबा को ये पक्का था कि अभी शायद समय नहीं आया है, समय आएगा तो ये बात भी हो जाएगी। यही फुल स्टॉप है, व्यर्थ संकल्पों को न चलाना। तो ये हम भी देखें, सारी दुनिया हमारी इच्छा के अनुकूल तो चलेगी नहीं, हर एक का अपना अपना सोचने का ढंग है। तो अगर हमारे अनुरूप नहीं भी कोई कार्य होता है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो हम उस तरफ बुद्धि न चलाए, बस वहां स्टॉप करके, अर्जुन अभी इस चीज का शायद समय नहीं आया। इसीलिए बाबा को हमेशा ये रहता था, जो बाबा कई बार साकार मुरली में, अव्यक्त मुरली में बोला है ना, हम सब बच्चों को कर्मातीत अवस्था के क्या लक्षण है, कितने कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं, हमें कितने सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं, कितने कहा है बाबा ने मालूम है? कई बार बाबा ने अव्यक्त मुरली में बोला है, हम सभी बच्चों को 3 सर्टिफिकेट हर एक को लेने, याद है ना? कौन से 3 सर्टिफिकेट? हाँ बोलो, एक स्वयं से, एक परिवार से और एक बाबा से, भगवान से। अब भगवान तो दयालु है, कृपालु है, बाबा हमारा पिता है। सबसे इजी होता है पिता से सर्टिफिकेट लेना, क्योंकि पिता की गोदी में तो बच्चे पलते ही हैं। तो पिता से सर्टिफिकेट मिलने का कौन सी एक बात है, बाबा की बुद्धि में सदैव वो रहती थी, मुझे भगवान का, मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, दूत हूँ, ईश्वरीय कार्य में हूँ। तो उसमें जो बाबा ने एक ही बात बताई, वो बात बुद्धि में रहे तो भगवान से सदा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कौन सा स्लोगन है? भगवान किस पर खुश होता है? सच्चे दिल पर साहब राजी। बस और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, अपना दिल सच्चा और साफ रखो, सच्चे दिल पर साहब। तो इसीलिए जितना जितना दिल में सच्चाई और सफाई होगी ना, भगवान को ऑटोमेटिकली राजी। इसीलिए भगवान का नाम भी क्या बोलते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। अब बाबा ने पहले से ही बता दिया है, जो भी सच्चे दिल का होगा क्या होगा? सच की नाव हाँ डोले डोले हिलेगी डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो इस कारण से परिस्थिति आएंगी, लेकिन ये भी निश्चय पक्का रहे नहीं मैं तो कलप पहले की विजयी आत्मा हूँ, मेरा साथी भगवान है और विजय मेरी निश्चित है। भले अभी परिस्थिति थोड़ी डगमग हो रही है लेकिन अंतिम विजय मेरी होनी है। पांडवों को निश्चय था तो अंतिम में विजय हुई ना। इसी रीति से ये सच की नाव डोले लेकिन डूब नहीं सकती, लेकिन उसकी पहचान क्या है? क्योंकि हम कहें नहीं मैं तो बहुत सच्चा हूँ, ये तो अंदर का मन की बात है, लेकिन प्रदर्शित कैसे होगा कि वास्तव में मैं सच्चा हूँ? क्या पहचान है उसकी? जो कहते हैं ना सच तो बिठो नाच, वो खुशी में नाचता रहेगा। कोई भी बाहर की परिस्थिति उसकी खुशी को कम नहीं करेगी। तो वो बाबा का देखने में मिलता था, बहुत परिस्थितियां हैं, इतने बड़े बड़े कई जगह आते थे, कलकत्ता में मेला हो रहा था और वहाँ दूसरे विरोधियों ने आग लगा दी, पूरा मेला जल गया, टेंट जल गया। हमारे बड़े बड़े भाई थे वकील, उन भाइयों ने बोला कि बाबा हमारे पास इतना स्ट्रांग केस है, हम उन पर अगर केस करेंगे तो तुरंत जीत जाएंगे, प्रमाण है, वीडियो है, ये खींचा है कि वो आग लगा रहे हैं। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाप जो है कभी भी बच्चों पर केस नहीं कर सकता। जो उन्हें बिचारों को ज्ञान नहीं है कि ये किसका हमने वो नुकसान किया है, ये उनका दोष, उनका बिचारों का अज्ञान है, लेकिन हमें मालूम है वो अपना पार्ट बजा रहे हैं। और हमारा काम है, जो भी महान आत्माएं होती हैं, हम बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं, और उनका सबसे बड़ा महान आत्माओं का कौन सा गुण होता है? क्षमा करना। इसीलिए कहा कि क्षमा करो और क्षमा मांग लो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा, कमजोर होगा, वो क्षमा नहीं कर पाएगा। उसके मन में बदले की भावना होगी, किसी ने अपमान कर दिया, निंदा कर दी, कोई कठोर शब्द बोल दिया, हमारे मन में ये होगा ओहो मुझे भी उसको, मैं भी रास्ता दिखाऊंगा, मैं भी बता दूंगा मैं कौन हूँ, और बदले की भावना किसी न किसी, तो वो हमारी कमजोरी का लक्षण है। जो महान आत्माएं होती हैं, आप किसी का भी देख लो, वो कभी भी बदले की भावना नहीं, क्षमा की भावना। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, मदर टेरेसा, कोई भी महान आत्माएं देखो, मैंने तो ब्रह्मा बाबा को बहुत निकट से देखा, कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां, नहीं बच्चे उनका दोष नहीं, वो बेचारे अपने विकारों की कमजोरी के वशीभूत होकर ये कर रहे हैं, उनका दोष नहीं। कभी भी किसी को इस रीति से दंड देने का ख्याल, बदला लेने की भावना, ये सब कभी भी बाबा के देखा सुनने की बात क्या आंखों व्यवहार से रिफ्लेक्ट ही नहीं होता था। ये एक महानता का, जिसने बाबा को कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ा दिया। तो एक तो हमारा लक्ष्य बुद्धि में ये रहे बाबा की तरह, मुझे एक तो भगवान से सर्टिफिकेट लेना है। प्रभु से सर्टिफिकेट लेने का कौन सा हुआ फिर महामंत्र? एक क्या हुआ? भगवान से किस चीज से सर्टिफिकेट मिलेगा? हाँ, सच्चे दिल पर साहब राज। दूसरा सर्टिफिकेट किससे लेना है? अपने से। अपने से कब सर्टिफिकेट मिलेगा? देखो ये सबसे बड़ा और सर्टिफिकेट है। क्यों? क्योंकि कई बार हमारे मन में भी कोई बात हो, चलती है, बाहर तो हमने कही नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मानो मैंने कोई भी गलत काम किया है, गलत सोचा है, मर्यादा के विपरीत बात की है, क्या होगा? मेरा दिल ही अंदर खाएगा। बाहर से कोई दंड नहीं देगा, बाहर से कोई बात न भी हो, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी अंतरात्मा खाएगी, कॉन्शियस मेरी बाइट करेगी कि मैंने ये काम ठीक नहीं किया। तो हम अपने को सदा ये चेक करते चलें कि कहीं मेरे किसी सोचने, बोलने, व्यवहार से मेरी अंतरात्मा तो मुझे धिक्कार नहीं रही है। और इसीलिए अपने से सर्टिफिकेट लेने का सबसे बढ़िया तरीका है कौन सा, सदा हम मर्यादा की लकीर में रहे। सीता ने भी जब मर्यादा की लकीर को ना क्रॉस किया तो क्या हुआ, तो बात चल रही थी प्रभु पसंद का तो सर्टिफिकेट ले लिया, मन पसंद का भी लिया। मन पसंद का के लिए कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सा पुरुषार्थ, हाँ सदा हम अपना मन वचन कर्म को व्यवहार को चेक करते चले कि मर्यादा युक्त है, मर्यादा की लकीर में है। सीता ने भी जब मर्यादा की लकीर क्रॉस किया तो कौन ले गया, रावण ले गया। बस तो जहां भी हमारे मन के अंदर से भी बाबा की दी हुई जो भी ज्ञान मर्यादाएं हैं उनका कभी उल्लंघन होता है तो हम कमजोरियों के विघ्नों के रावण के वशीभूत हो जाते हैं। तो मन से और जब वशीभूत हो जाते हैं तो और कोई कहे ना कहे, हमारा मन ही हमें पूरी गवाही नहीं देता कि मैं माला खमण का बन सकती हूँ या बन सकता हूँ, विजय माला में आ सकती हूँ, नहीं। क्योंकि अंदर अगर मर्यादा का उल्लंघन हुआ है तो अपना मन ही हमें खाएगा। और तीसरा सर्टिफिकेट है किसका, परिवार का, जो बाबा ने कहा है जो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, मुश्किल काम है। क्यों, क्योंकि परिवार में जब रहते हैं हर एक के भिन्न भिन्न संस्कार है, हमारा दैवी परिवार है और इस कारण से कई बार हम कोई बात देखते हैं, अरे ये इतना पुराना भाई, 20 साल 25 साल पुराना बहन, इनमें भी अभी ये संस्कार है, क्रोध है, ये भी ऐसी बात बोल देते हैं, शब्द ऐसे निकल आते हैं, मुझे तो अभी 5 साल ही हुए हैं, 8 साल 10 साल ही हुए हैं, मैं भी पुरुषार्थी हूँ। दूसरों को जब हम देख लेते हैं ना, तो हमारे अंदर ये संकल्प चलने लगते हैं। तो परिवार से अगर सर्टिफिकेट लेना है तो क्या करें? बाबा ने उसकी भी बड़ी सहज युक्ति बताई है, बहुत अच्छी युक्ति। क्या कि कभी भी हम जिसको भी देखें ना, उसको वर्तमान के दृष्टि से ही न देखें, त्रिकालदर्शी होकर के तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान बुद्धि में रख के उसे देखें कि आज भले ये आत्मा जो कर्म इस समय कर रही है, पूरी अपनी संपूर्ण सात्विक स्टेज में नहीं है, लेकिन ये वो ही आत्मा है, कौन, जिसे भगवान ने चुना है। बाबा ने कहा है, मेरा आखिरी में आखिरी बच्चा भी ना दुनिया के बड़े से बड़े प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से भी महान है। क्यों? क्योंकि जरूर उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी खासियत है जिसके कारण वो भगवान की नजरों में आया है और भगवान ने उसे चुना है। देखने में हम भले साधारण लगते हैं, लेकिन हम बहुत ऊंच महान आत्मा है, भगवान ने मुझे चुना है, और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता, दुनिया वालों का तो चाहे हो जाए। इसीलिए आज इस आत्मा में कोई कमजोरी का संस्कार अगर प्रकट हो भी रहा है, समय के साथ ये खत्म हो जाएगा, और समय पर इस आत्मा के द्वारा बाबा को जो सर्विस करानी है, वो ऐसी सर्विस होगी जिस कारण से ही भगवान ने इसे चुना है। इसीलिए हम किसी भी आत्मा को जो देखें, केवल एक काल के इस वर्तमान के दृष्टिकोण से नहीं, तीनों कालों की दृष्टि से, त्रिकालदर्शी होकर के अगर हम देखेंगे, तो फिर उस आत्मा में हमें कोई कमी कमजोरी नजर नहीं आएगी। हर आत्मा हमें महान दिखेगी, ये भगवान की चुनी हुई आत्मा है। और फिर क्या होगा, किसी भी आत्मा से मन भेद, मत भेद, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। और उसके लिए बाबा ने एक बात और खास बताई, ये कब होगा, हर एक को रिगार्ड देते चलो। हर आत्मा आज रिस्पेक्ट, मान की भूखी है, हर आत्मा को मान देते चलो। आप देखो, चाहे वो लौकिक हो, अलौकिक हो, लौकिक परिवार, दैवी परिवार, चाहे ऑफिस का, चाहे बिजनेस का, पड़ोसी हो, कोई भी हो, ज्ञान में चले न चले, लेकिन आप उसे मान देते रहो, रिस्पेक्ट देते चलो, रिगार्ड देते चलो, वो आत्मा आपकी हो जाएगी। मुझे याद आती है एक घटना, तब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, 1963-64 की बात है, 64 या 65 की। तो यहाँ पर आए थे, मधुबन में एक आए थे, दिन में तो सोने का अभ्यास नहीं था, तो ऐसे दोपहर भोजन के बाद हम बाहर ही, मधुबन जो आप गए होंगे कोर्ट यार्ड में, उधर ही बैठे हुए थे, टहल रहे थे, तो हमने देखा गेट के पास कुछ सन्यासी जा रहे हैं, और तब गेट पर पहरा भी देने वाली एक हमारी दादी, भूरी दादी होते थे उस समय, तो वो उतने बुजुर्ग नहीं थे, वो पहरा दे रहे थे। तो एक उन सन्यासियों में से भी जो मुख्य था, वो 4-5 का ग्रुप था, वो आया और उसने दादी से पूछा कि भाई मुझे आपके बाबा जी से, गुरु जी से मिलना है। तो दादी, भूरी दादी ने कहा कि भाई हाँ हाँ जरूर मिलिएगा, लेकिन अभी तो दोपहर के 3 बजे हुए हैं, आप 1 घंटे बाद आएंगे, अभी तो थोड़ा हो सकता है बाबा का आराम का समय है, मैं आपको आधा 1 घंटे बाद मिला दूंगी। और कि नहीं नहीं, वो सन्यासी भरे हुए थे कि नहीं नहीं, हमें अभी मिलना है, शाम को तो हम चले जाएंगे, और हमने सुना है कि बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं वो शास्त्रों के विपरीत है, और हमें उनसे शास्त्रार्थ करना है, भरे हुए थे। तो उन बहन जी ने समझाने की बहुत कोशिश करी, वो समझे नहीं, तो उन्हें बैठा के वो बाबा के पास गई, बाबा के कमरे में। तो भले बाबा का आराम का समय था, लेकिन जैसे थोड़ी सी आहट हुई बाबा ने पूछा हाँ कौन बच्ची, तो बाबा मैं आई हूँ और बाहर कुछ वो सन्यासी वगैरह वो आए हैं और वो अभी ही इस समय ही आपसे मिलना चाहते हैं और बड़े अंदर के वो जैसे भरे हुए हैं और कि शास्त्रार्थ करना है हमें, बाबा से मिलना है। तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची कोई बात नहीं, उन्हें बैठाओ बाबा आता है। देखो बाबा को कोई भी आराम के समय का या किसी बात का ख्याल नहीं, दोपहर का समय, इतने सुबह बाबा 2 बजे रोज उठ जाया करते थे और पूरे दिन भर यज्ञ का कारोबार सब कुछ। लेकिन बाबा ने कहा बैठाओ बच्ची, तो मैंने जाकर के बूढ़ी दादी ने उन्हें हिस्ट्री हॉल में बैठा दिया और हिस्ट्री हॉल में ऐसी सुंदली पड़े हैं, वो जाके सब नीचे बैठ गए, क्योंकि सन्यासियों का भी कायदा होता है जिस आश्रम में जाते हैं उनकी जो गुरु की गद्दी होती है वहाँ वो गुरु ही बैठता है, बाकी जो भी आते हैं वो सामने बैठ जाते हैं। तो वो बैठ गए और थोड़ी देर में बस बाबा आए। बस बाबा ने आते ही उन सबको दृष्टि दी, कहा अरे बच्चे नीचे क्यों बैठे हो, हाँ ऊपर बैठो। संदलियों की तरफ बाबा ने इशारा किया तो उन्होंने जो उनके मुख्य थे उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो आपकी गद्दी है, आप बैठो, हम तो यहाँ नीचे यहाँ पर हैं। नहीं नहीं बच्चे, बाबा का इतना वही प्यार भरा, सुनी बच्चे देखो आप सब तो बाल ब्रह्मचारी हो, आपने ही तो भारत को थामा है, और ये तो बाबा अपनी तरफ इशारा करके देखो ये तो घर गृहस्थी वाला वो आदमी, और आप लोगों के तो बाबा ने भी आप जैसों को तो गुरु किया हुआ था, और इतना प्यार से नम्रता से बाबा ने समझाया और बोला फिर भी वो नहीं उठे। तो बाबा ने बड़े प्यार से अरे बच्चे उठो उठो, देखो आप लोगों के बल पर ही तो भारत आज थमा हुआ है, नहीं तो आज तो भारत कितना रौरव नरक और हो गया होता। बस एक जो मुख्य था उसको प्यार से बाबा ने उठाया और वहां से पकड़ के और उठा के उसे संदली पर बिठा दिया और बाबा खुद सामने नीचे बैठ गए। देखो कितनी महानता कितनी नम्रता, और बस ये रिस्पेक्ट रिगार्ड, नहीं तो बाबा को अरे मैं यहाँ का हेड हूँ वो, कुछ ऐसी भावना नहीं, बिल्कुल उठा के और बस बड़े प्यार से बाबा ने कहा हाँ बच्चे पानी वानी पहले ये सब, तब तक तो वो वहाँ पर बैठे हुए थे। बाबा ने पूछा हालचाल पूछ पाछ के, फिर बाबा ने कहा हाँ बच्चे बोलो कैसे आना हुआ। अब बाबा के इतने प्यार से नम्रता से इस व्यवहार से, अब भले वो भरे हुए आए थे लेकिन अंदर ही अंदर जैसे बिल्कुल पानी पानी जैसे होने लगे। फिर एक ने हिम्मत करके वो सन्यासी उसकी तरफ देखे, वो उसकी तरफ देखे कि वो बोले लेकिन किसी को भी वो ना हो क्योंकि बाबा का इतना ऊंचा महान व्यवहार। फिर एक ने हिम्मत करके वो बोला जो मुख्य था कि बाबा हम इसलिए आए हैं, हमने सुना है कि आप जो भी ज्ञान सुनाते हैं वो शास्त्रों के विपरीत है, कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा 84 लाख योनि में नहीं जाती, पशु पक्षी नहीं, ये सब तो शास्त्रों के विपरीत है और हम उसी के लिए यहाँ आए थे कि भाई हम बाबा आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। तो बाबा ने बड़े नम्र भाव से कहा देखो बच्चे, बाबा ने भी सारा जीवन भर यही सुना यही शास्त्र पढ़े वो करा, लेकिन भले पढ़ते थे रोज कि काम क्रोध लोभ नरक का द्वार है, लेकिन न काम पर विजय हुआ न क्रोध पर न लोभ पर, संसारिक वो सब चलता रहा। अब शिव बाबा आके इसके द्वारा जो क्या बोल जाता है वो बाबा को भी पता नहीं चलता, और ये बाबा शिव बाबा ने ही ये ज्ञान दिया है परम पिता परमात्मा ने कि ये काम क्रोध लोभ ये कैसे नरक के द्वार हैं। और बच्चे अब देखो जीवन में ये परिवर्तन आता है और आत्मा में शक्ति भरती है, और बाबा ने वो ज्ञान बिल्कुल निश्चल भाव से एकदम सुना दिया कि किस प्रकार से ये विकारों पर विजय हो रही है। लेकिन वो इतना भर के जो आए हुए थे और बाबा के व्यवहार से इतना पानी जो हो गए थे, बस थोड़े में ही एक लाइन में ही समझ के हाँ हाँ बाबा बहुत अच्छा ज्ञान है आपका, बहुत कोई शास्त्रार्थ करना तो जैसे भूल ही गए, कोई उन्हें वो स्मृति नहीं रही, और फिर उठ के खड़े होके बाबा को प्रणाम करके वो लोग चले गए। ये है परिवार पर अपने विरोधी से विरोधी को भी अपना बना लेना, ये कर्मातीत अवस्था के आगे की तरफ बढ़ने की निशानी है। हमारे व्यवहार से कोई हमारा विरोधी न बने, क्योंकि उसकी जो निगेटिव फीलिंग होगी, वाइब्रेशंस होंगी, वो हमें, हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो भी हमें आगे नहीं बढ़ने देगी। इसीलिए जहां तक हो, इसीलिए बाबा ने जो बड़ा लक्ष्य सब्जेक्ट दिया हम लोगों को, संतुष्ट रहने का, संतुष्ट करने का। हर आत्मा को हम संतुष्ट करते हुए आगे बढ़ते चले। तो जिसकी जो आवश्यकता, और परिवार से, दुनिया वालों से सर्टिफिकेट लेना है, वो रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से, बस हर एक को रिस्पेक्ट रिगार्ड देते चले, हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब मैं आपको खास एक घटना और सुनाना चाहता हूं, जो असली है कि 18 जनवरी जिस दिन बाबा ने शरीर छोड़ा, उस दिन हम मधुबन में ही थे, बाबा के सामने ही। तो हमने भले 1961-62 से कई बार बाबा से मिले थे, लेकिन हम देख रहे थे कि जितना जितना समय गुजरता जा रहा है, बाबा बहुत अंतर्मुखी, गंभीर, एकाग्रचित, एकांत प्रिय और होते जा रहे हैं। और हमने ये देखा, खास करके बाबा सब समेटते जा रहे थे बुद्धि से। पहले हम लोग जाते थे बाबा के पास, बाबा ये सर्विस है, ऐसा करा, बाबा सुनते थे, बताते थे, बच्चे ये सर्विस करो, बाबा के पत्र भी लिखे हुए होते थे, हाथ से लाल लाल अक्षरों से बाबा पत्र लिखते थे, और कि अब ये करो, ऐसी सर्विस करो, मंदिर में जाओ, रोटरी में जाओ, भाषण करो, क्लब में जाओ, ऐसा करो। लेकिन बाद में जब हम 1968-69 में बाबा से मिले, और जिस दिन कर्मातीत अवस्था, उससे एक दिन पहले भी 17 तारीख को बाबा को हम सुना रहे थे कि बाबा ये सर्विस वहां आसाम में, तब हम पोस्टेड थे और आसाम से वहां आए थे, तो बाबा दो एक लाइन सुन के ही बाबा ने कहा, बच्चे बाबा समझ गया। तो मैंने कहा, बाबा अभी तो हमने शुरू ही किया है, बहुत ये सर्विस, ये बहुत उमंग उल्लास में, कि नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। तो बस मतलब हर बात को बाबा समेटते जा रहे थे। इतना सब कारोबार हो के जिस चीज में 10 मिनट लगता है, वो भाई आधा मिनट में ही वो बात को समेट करके उस बात को पूरी करो, और फिर बाबा जैसे अपने पुरुषार्थ में तल्लीन हो जाते थे। तो एक हम ये देखें कि क्या मैं भी ऐसा समेटता जा रही हूँ, समेटता जा रहा हूँ। घर गृहस्थी में रहते हो तो वहां की बात, बिजनेस की बात, व्यवहार की बात, अगर सेंटर पर रहते हो तो सेंटर के विस्तार की, मतलब मन हमारा उसके अंदर सब सब कार्य करें। बाबा ने भी अंतिम समय तक अपनी पूरी ड्यूटी निभाई, पूरा लास्ट तक क्लास कराई, सब कुछ करा, लेकिन मन से ना, बुद्धि से सारा विस्तार को समेटा हुआ। और इसीलिए बाबा कहता है अचानक, और ये ही एवर रेडी का लक्षण है, जो बाबा हमेशा कहता है कि एवर रेडी रहो। तो एक बाबा में ये देखा कि एक ये बात। दूसरी बात, जितना हम और कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंचते जाएंगे, तो क्या होगा, हमारे मन के अंदर की ना इच्छाएं, उस पर हमारा नियंत्रण होता जाएगा। और जो बाबा कहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, वो हमारी होती जाएगी, शुभ इच्छा भी वो नहीं, इसका बुद्धि का ताला खुले बाबा, इसका ऐसा सेवा हो जाए, ये सब भी नहीं। और उससे क्या होगा लाभ, कि जब चारों तरफ से हमने बुद्धि को समेटा हुआ होगा, अंत में जब हमारे प्राण स्तन से निकलेंगे ना, तो कोई भी चीज हमें खींचेगी नहीं, ऊपर से आया बुलावा, हाँ बाबा हम आए, हम तैयार हैं, बस भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान, वो जैसे कि हमारा अपना हो जाएगा। जब चाहेंगे हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ के जा रहे हैं, ये नहीं कि ये इधर ये बुद्धि खींच रही है, उधर वो काम खींच रहा है, उसमें नहीं। और ये बाबा का प्रत्यक्ष देखने में रहा अंत समय तक। और वो कब होगा, बाबा का देखा हमने कि बाबा के सम्मुख हम जाते थे 17 और 18 जनवरी को 1969 में, हम कम से कम 6-7 बार बाबा से मिले, बाहर की पार्टियां नहीं थी, बस बाबा से मिलते थे, बाबा से हम ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। मन में प्रश्न लेके जाते थे या कोई बात सेवा की लेके जाते थे, बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी थोड़ा, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसे कर लो, ऐसे हो जाए। मन का बाबा प्रश्न भी बता देते थे, उसका समाधान भी दे देते थे। एक बार हुआ, दो बार, तीन बार, हर बार जब ऐसा ही होता था बड़ा आश्चर्य होता था। बाद में जब हमने एक बार बड़ी दीदी जी से, मनमोहनी दीदी जी से, जो इनकी स्मृति में मनमोहनी वन बना हुआ है ना, उनसे एक बार जब पूछा कि दीदी ये कैसे कि बाबा के पास जाते हैं, बस बाबा दृष्टि दी और बाबा मन का एकदम तुरंत संकल्प पढ़ के उसका समाधान दे देते हैं, नहीं तो उस काम में इतने देर लगे, 10-15 मिनट हम ले, हम सुनाए उन्हें और फिर बाबा भी सोच के उत्तर दे, अभी तो बस आधा मिनट एक मिनट में ही प्रश्न भी बाबा बता देते हैं, उसका समाधान भी हो जाता है, ये कैसे होता है। तो दीदी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि देखो, जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है और संपूर्ण अवस्था के निकट होती है, तो उसकी अपने मन के संकल्पों पर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त हो जाती है, और जब अपने मन के संकल्पों पर संपूर्ण विजय हो जाती है तो बाहर के किसी भी आत्मा के कोई भी जो सम्मुख आए उसके मन के संकल्प को वो तुरंत पढ़ लेगी और उसका समाधान कर देगी, उसका उत्तर दे देगी। और ये ही मन जीते जगत जीत का लक्षण है। अपना मन जीता है, जगत का भी मन जीत लेते हैं, जगत जीत का लक्षण है कर्माती। और ये प्रैक्टिकल बाबा में देखा, एक बार दो बार नहीं, 6-7 बार हमने उन दो दिनों में ये अनुभव किया और प्रैक्टिकल भी अनुभव किया। 18 जनवरी को बाबा मुरली चला रहे थे, अंतिम क्लास बाबा की, आपने भी टेप में सुनी होगी, न सुनी हो उसकी कैसेट वगैरह भी मिलती है। तो हिस्ट्री हॉल तो छोटा है, 25-30 लोग बैठे हुए थे, मधुबन वासी और बाहर के, तो हम और हमारे लौकिक पिताजी, हम ही लोग गए हुए थे, बाबा मुरली चला रहे थे। बस मुरली सुनते सुनते ही हमारे मन में एकदम संकल्प आया, जस्ट संकल्प, कि क्या ही अच्छा हो अगर बाबा हमारा नाम लेके और कुछ पुरुषार्थ में गाइडलाइन दे दे और बाबा कोई महावाक्य उच्चारे। सिर्फ मन में संकल्प आया, दूर बैठे हुए, और देखो वो आत्मा तो कर्मातीत थी, संपूर्ण अवस्था के बिल्कुल निकट थी, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी। और बस उसका लक्षण ही है, जैसे ही मन में संकल्प आया हमारे, तुरंत जैसे बाबा को कैच हुआ होगा और बाबा ने तुरंत ही नाम लेके भी और मुरली चला दी। और उसके अंदर देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा है, कभी किन्हीं की निंदा नहीं करेगा वगैरह वगैरह, बाबा ने बहुत करके और गाइडलाइन भी दे दी और भविष्य भी बता दिया। तो ये जो बाबा के द्वारा पार्ट चला, ये हम एक एक बच्चे के द्वारा ये पार्ट चलना है। अंत समय में बहुत दुनिया की सब आत्माएं हमारे सम्मुख आएंगी, अनेक इच्छाएं लेकर के आएंगी, और अगर मेरे मन में ही अपनी कोई इच्छा हुई, मैं उन आत्माओं की इच्छाओं को कैसे पूर्ण कर सकूंगी? न उनकी इच्छा को हम पढ़ सकेंगे, न हम उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। तो इसीलिए अंत में आएंगी बहुत आत्माएं, कोई मानो हनुमान के साक्षात्कार की इच्छा लेके आई, कोई देवी के साक्षात्कार की इच्छा लेके आई, कोई राम के साक्षात्कार की। हरेक का इष्ट देव अपना होता है, हम तो वही है एक, लेकिन शिव बाबा हमारे द्वारा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। अगर हम इच्छा मात्रम अविद्या होंगे तो हमारे द्वारा जो इच्छा लेके आत्मा आई है उसको वैसा ही साक्षात्कार होगा। और ये हमने देखा भी है, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में पढ़ा है ना, ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो कृष्ण की आत्मा थी, लेकिन शुरू में ये सुना है ना कि एक सरदार जी आए थे और ज्ञान में नहीं थे लेकिन ज्ञान के विपरीत थे, तो वो बाबा को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से आए थे छुरा लेके। और जब बहनों ने बाबा के, उन्होंने कहा मुझे बाबा से मिलना, शुरू के यज्ञ की बात है, और बहनें ले गई, और जब वो सरदार जी अकेले थे और बाबा अकेले, तो सरदार जी ने वो छुरा निकाला और वो बाबा को कुछ मारने वाले थे, तो उन्हें क्या हुआ, जीवन कहानी में पढ़ा है ना, उन्हें गुरु नानक देव का साक्षात्कार हुआ। बाबा थी तो कृष्ण की आत्मा, नारायण की आत्मा, लेकिन गुरु नानक देव का साक्षात्कार क्यों हुआ? क्योंकि वो आत्मा जो सरदार जी आए थे, उनके मन में गुरु नानक देव के प्रति भावना थी। अगर उसे कृष्ण का ही साक्षात्कार हो जाता तो उसकी तो भावना ही नहीं बैठती और वो कुछ भी नुकसान कर सकता था। लेकिन जैसे ही उसे गुरु नानक देव का साक्षात्कार हुआ बाबा से, वो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, छुरा उसके हाथ से छूट गया। ओहो गुरुजी, मैं क्या करने वाला था, आपके ऊपर मैं ये वार करने वाला था। इतना पश्चाताप हुआ, बाबा के चरणों में झुक गया, रोने लगा और वहां पर छुरी रख के, और बस ये मैं क्या करने वाला था। तो शिव बाबा साक्षात्कार की चाबी केवल एक बाबा के पास है, किसी भी आत्मा के पास नहीं। लेकिन हमारे तन का आधार के द्वारा बाबा, जो भक्त आत्माएं जो या जो भी आत्माएं आएंगी, उनको उनकी इच्छा के अनुरूप वो साक्षात्कार कराएगा। और तब उनके मन में होगा, तभी प्रत्यक्षता होगी और तभी ये होगा कि हाँ, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। भगवान का ये जो कंसेप्ट है, ये ब्रह्मा कुमारी वाले अभी तो वो बोल देते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था भी एक है, लेकिन ऐसा समय आएगा जब वो बोलेंगे ये संस्था ही एक है, जहाँ पर भगवान का ज्ञान दिया जाता है, स्वयं ज्ञान देने वाला परमात्मा है, ये और किसी का ज्ञान नहीं। यही प्रत्यक्षता का साधन है, जो बाबा बार बार कहते हैं अपनी अवस्था बनाओ, तीव्र पुरुषार्थी बनो, मन के संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त करो, जो बाबा ये चाहता है। तो अभी हमें सबको मिल करके बाबा की इन इच्छाओं को पूर्ण करना है। और साथ ही साथ अंत में एक ये बात कि अपना पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सर्व आत्माओं के संतुष्ट भी, लेकिन साथ ही साथ बाबा ने जो बोला है प्रकृति के 5 तत्वों को भी हमें पवित्र बनाना है, क्योंकि ये शरीर भी हमारा प्रकृति के 5 तत्वों का ही तो बना है, इसके बिना तो कोई गुजारा ही नहीं। तो इस कारण से बाबा का भी देखो, बाबा ने कैसे प्रकृति के 5 तत्वों को इतना पवित्र बना दिया था। 18 जनवरी को मुरली सुना के बाबा उठ के बच्चों को दृष्टि देके, अच्छा, बाबा बच्चों से विदाई लेता है, छुट्टी लेता है, कह के बाबा कमरे में गए और बस वहां जाके दादी प्रकाशमणि जी थे, उनके हाथ में हाथ सारी शक्तियों की विल करते हुए, नैनों से मुलाकात करके, हाथ में हाथ दृष्टि देते हुए बाबा ने जैसे इस दुनिया से विदाई ली। तो 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा, मतलब अर्ली नाइट, लेकिन 18 जनवरी का रखा हुआ शरीर 18 की रात को रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को, क्योंकि सब बच्चों के टेलीग्राम आने लगे, टेलीफोन आने रखे, बाबा को शरीर रखो, हम आ रहे हैं, चारों तरफ से जो भी बच्चे थे सब आए, लेकिन इतने लगभग 65-70 घंटे तक शरीर रखा रहा, लेकिन ये प्रकृति के 5 तत्वों का बना शरीर भी इतना तत्वों को बाबा ने पावन कर दिया था कि न तो शरीर कुछ काला पड़ा, न दुर्गंध आई, न कोई शरीर में ऐठन हुई, नहीं तो जब आत्मा चली जाती है तो शरीर स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है। इतने घंटे के बाद भी हम लोगों ने जब बाबा को स्नान वगैरह भी कराया, बिल्कुल बाबा का शरीर एकदम फ्लेक्सिबल, जरा भी उसके अंदर वो नहीं। अब बस लगता था जैसे अभी बाबा बस लेटे हुए हैं, चमकता हुआ शरीर, और बस अभी बाबा हमेशा की तरह कहेंगे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, जैसे सदा। तो ये है प्रकृति के तत्वों पर भी संपूर्ण विजय प्राप्त कर लेना, ये 5 तत्वों के ऊपर। और जो बाबा अब यही चाहता है कि ये 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर भी जो है ना, इन यही कर्मेंद्रियां, इन पर अगर हमारा जितना नियंत्रण होगा, आंख नाक कान हाथ मुंह, ये जितने 5 तत्व पंच कर्मेंद्रियां, तो और इनको कैसे होगा, इन तत्वों को भी हम शुभ भावना, शुभ कामना का, वाइब्रेशन का जितना दान देते चलेंगे, ये तत्व भी हमारे सहयोगी बनते चले जाएंगे। हर तत्व को हम अपना कैसे मित्र बना लें। शुद्ध करते रहे। और हर एक तत्व के बहुत गुण है, लेकिन हम एक गुण बस लेते चले, कम से कम ये तत्व को हम अपना मित्र बना लेंगे। पानी में कौन सा गुण होता है? सबसे शीतलता तो होता है। सबसे बड़ा पानी में गुण है, पानी को किसी भी बर्तन में लो वैसा रूप ले लेगा। गिलास में लो गिलास का रूप, कटोरी में लो कटोरी में, थाली में लो थाली का रूप, चम्मच में लो चम्मच में सेट हो जाएगा। तो ये अगर हमने भी गुण धारण किया हुआ होगा कि हम हर आत्मा के साथ सेट होके चले, फ्लेक्सिबल होके, ये नहीं कि इसके साथ तो चलना बड़ा आसान है, इसके साथ मुश्किल है, इसके साथ मेरा स्वभाव संस्कार नहीं मिलता है, नहीं, हर एक के साथ सेट होके चलेंगे तो प्रकृति का ये जो तत्व है जल तत्व हमारा मित्र बन जाएगा, और कभी भी हमें चाहे जितना फ्लड हो सुनामी हो ये हमें नुकसान नहीं कर सकता। इसी तरह पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? दाता का। पृथ्वी हमेशा देती है, एक बीज आप बो दो पूरा वृक्ष निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। ऐसी हम पृथ्वी की तरह दाता होके रहे, शुभ भावना शुभ कामना प्रेम आदर सत्कार नम्रता स्नेह, बस ये चीज जिनमें कोई खर्चा भी नहीं होता है, कोई स्थूल आवश्यकता नहीं, हर एक को जितना देते चलेंगे बांटते चलेंगे तो जैसे पृथ्वी को हम अपना मित्र बना लेते हैं। और पृथ्वी में जितने अर्थक्वेक आएंगे, जितने हिलेगी हलचल होगी, लेकिन पृथ्वी हमारे दुख अशांति मृत्यु का कारण नहीं बन सकती कभी, क्योंकि पृथ्वी को मित्र बना लिया। ऐसे वायु में कितना हल्केपन का गुण है, ऐसे ही वायु की तरह हम सदा हल्के रहे, बस उड़ते रहो और उड़ाते रहो जो बाबा कहता है ना। तो जितना हल्का अगर हमारा होगा उतना हम ऊपर उठते रहेंगे, तो जितना साइक्लोन आएंगे हवा चले तूफान आए जो कुछ भी हो, लेकिन वायु तत्व हमारी रक्षा करेगी, दुख अशांति मृत्यु का कारण नहीं है। ऐसे ही आकाश का गुण है विशालता, तो जीवन में हम भी विशालता को धारण करते चलेंगे आकाश की तरह, महानता, किसी के अवगुणों को चित्त पर ना रखे तो आकाश की तरह। तो आकाश मार्ग से आने वाले जो भी होंगे, एटम बम आए, हाइड्रोजन मिसाइल रॉकेट कुछ भी आएगा, वो आकाश को ही हमने अपना मित्र बना लिया, आकाश का गुण धारण कर लिया, तो आकाश मात्र से आने वाले कोई नुकसान नहीं। इसी तरह सूर्य अग्नि, सूर्य में अग्नि में रूप बदलने की शक्ति है, ऐसे हम भी ज्वालामुखी योग युक्त जितने हो जाएंगे अग्नि स्वरूप, तो जो दुखी अशांत आत्मा आएंगी, बाबा कहता है रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई जाए, दुखी आत्मा आए सुख का अनुभव करके जाए, अशांत आत्मा आए शांति की स्थिति में डूब करके चली जाए। और ये तभी होगा जब ये पांच तत्वों को जितना हम अपना मित्र बना लेंगे, तो उस मित्रता के साथ साथ हम जगत जीत बन जाएंगे और बाबा की तरह कर्मातीत अवस्था को सहजी प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति, ओम शांति।